नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम डॉक्टर लुका की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम विभिन्न बीमारियों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया करते हैं और हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको काफी अधिक जानकारी मिल रही है। आज हम निमोनिया के बारे में देखेंगे डॉक्टर लुका क्या बताते हैं, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना। आइए सुने डॉक्टर लुका की ये वार्ता।
प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कहा जाता है कि निमोनिया बूढ़ों का मित्र है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि निमोनिया वृद्ध रोगियों को शीघ्र ही मौत की नींद सुला देता है। यह क्यों और कैसे होता है? निमोनिया अविकसित देशों में मृत्यु के 5 प्रमुख कारणों में से एक है तथा विकसित देशों में मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में से एक है। इसलिए संपूर्ण विश्व में यह अब भी एक बड़ी ही स्वास्थ्य संबंधित समस्या है। ऐसा क्यों है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? पहली बात तो यह है कि निमोनिया मनुष्य का आरंभिक साथी है और आज भी है। दूसरी बात, यदि निमोनिया गंभीर हो तो कुछ ही घंटों में या कहा जाए तो कुछ ही दिनों में मनुष्य मर जाता है। तीसरी बात, नवजात शिशु से लेकर सबसे बूढ़ा व्यक्ति इसके प्रकोप के अधीन आ सकता है, यहाँ तक कि सर्वोत्तम स्वास्थ्य रखने वाला युवा जन भी। मित्रों, निमोनिया के कारण एक दिन में मनुष्य मर सकता है। किसी भी आयु, जाति, लिंग या स्थान का मनुष्य निमोनिया होने की संभावना से और मरने से बच नहीं सकता है। इसलिए यह सच है कि निमोनिया एक भयानक रोग है जो डॉक्टर और रोगी दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रिय मित्रों, हमें निमोनिया कैसे होता है? निमोनिया एक रोग है जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह हवा से हमारी सांस द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से होता है। प्रायः यह रोग किसी निमोनिया रोगी के संपर्क में आने से होता है। समस्या तो यह है कि जिस मनुष्य से हमें संक्रमण हो उसमें इसके लक्षण दिखाई नहीं दें, परंतु कीटाणु उससे हम तक पहुंच जाते हैं। यह विचित्र तो लगता है, परंतु विचार करके देखें तो यह विचित्र बात नहीं है। परंतु ऐसा क्यों होता है? मित्रों, जब किसी को निमोनिया का संक्रमण होता है तब लगभग 3 दिन तक उसके लक्षण जैसे बुखार, खांसी, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द या अन्य कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, और यदि दिखाई भी देते हैं तो लगभग नहीं के ही बराबर होते हैं। धीरे धीरे बहुत कम खांसी उठती है, जो इतनी कम होती है कि रोगी उस पर ध्यान ही नहीं देता है। परंतु इस समय जब रोगी में निमोनिया के लक्षण दिखाई नहीं देते, तब भी वह अपने फेफड़ों में उपस्थित कीटाणु सांस द्वारा दूसरे को दे सकता है। यही कारण है कि निमोनिया एक घातक रोग सिद्ध होता है। मित्रों, उसकी हल्की सी खांसी कुछ ही दिनों में अनेक मनुष्यों को संक्रमित कर सकती है। यही कारण है कि शीत ऋतु में अनेक जन निमोनिया के रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। मित्रों, परंतु ये जानना बहुत जरूरी है कि फेफड़े और गले में संक्रमण होने के कारण सदा निमोनिया नहीं होता है। वे खांसते तो हैं, परंतु वह खांसी निमोनिया के कारण नहीं होती है। हम निमोनिया का निदान तभी कर पाते हैं जब एक्सरे संक्रमण प्रकट करता है। इससे पहले मनुष्य रोगी हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है कि उसे निमोनिया हो। क्या ये अंतर जानना डॉक्टर और रोगी के लिए जरूरी है? जी हाँ, क्योंकि फेफड़ों में संक्रमण की अधिकता के कारण अधिकतर मृत्यु हो जाती है। यही कारण है जब डॉक्टर रोगी में निमोनिया निश्चित कर लें तो वह रोगी को अवश्य बताए कि स्थिति कितनी गंभीर है। मित्रों, ऐसी रोगी को काम पर नहीं जाना चाहिए और ना ही अन्य कोई काम करना चाहिए। उसे घर में आराम करना चाहिए। मित्रों, करुणा 25 वर्षीय स्नातक थी। वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में विपणन प्रतिनिधि और संपूर्ण महाद्वीप में अस्पतालों में उनकी दवाएं बेचती थी। वह जुखाम के अतिरिक्त कभी बीमार नहीं हुई। एक दिन शुक्रवार को वह अपने सप्ताह भर के काम के बाद आवश्यकता से अधिक थक गई थी, इसलिए वह शीघ्र ही सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसे तेज बुखार था, सिर में दर्द था, खांसी भी चल रही थी और शरीर में दर्द भी था। दोपहर तक तो उसकी यह हालत हो गई थी कि वह बिस्तर से उठने योग्य ही नहीं थी। उसकी खांसी में पीला बलगम निकल रहा था। उसने अपनी सहेली को बुलाया और वह उसे अस्पताल ले गई। मित्रों, जब वे अस्पताल पहुंचे तो उसकी सांस फूल रही थी। खून की जांच और एक्सरे के बाद डॉक्टर ने उसे यह बताया कि उसे निमोनिया है और उसे अस्पताल में भर्ती करना होगा। रात तक तो उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसे आपातकालीन वार्ड में वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके माता पिता भी आए। अगले कुछ दिनों में वह लगभग मर ही गई थी। वह अनेक सप्ताह अस्पताल में रखी गई और जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली तो उसे कई महीने घर पर आराम करना पड़ा। कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। मित्रों, करुणा सौभाग्यशाली थी कि वह बच गई, क्योंकि उसके जैसी स्थिति में अनेक लोग बचते नहीं हैं किंतु मर जाते हैं। इसलिए निमोनिया मनुष्य वरन समाज के लिए एक घातक रोग है। 1917 में अमेरिका में 125,000 से अधिक लोग निमोनिया से मर गए थे। लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व राजा दाऊद ने लिखा, जो निमोनिया से चंगाई पाने वाले समझ पाएंगे। भजन संहिता 69:1-3 और 13 में इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मित्रों, यह एक अति उत्तम पद्यांश है जिसमें दाऊद आवश्यकता के समय परमेश्वर को पुकार रहा है। ये ऐसा सुनाई पड़ता है जैसे करुणा ने अपनी बीमारी में कहा था, वह रो रही थी। मित्रों, दाऊद ने परमेश्वर से विनती की कि वह अपने उद्धार की निश्चितता से उसे उत्तर दे। इसी भजन में दाऊद आगे कहता है, जो कि भजन संहिता 69:30-36 में है, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं गीत गाकर तेरी नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक वरन सींग और खुर वाले बैल से अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी हैं तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे, क्योंकि परमेश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। प्रिय मित्रों, दाऊद को पूरा भरोसा था कि परमेश्वर से आशा लगाने का परिणाम निश्चय ही प्राप्त होगा। वो अपनी मुक्ति देखता है और देखता है कि परमेश्वर उसे उभरने में सहायता प्रदान कर रहा है। कैसी महान आशा! तदापि हम इस आशा को आगे चलकर और अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे। मित्रों, दाऊद उस समय तो अपने बैरियों से बचा लिया गया, परंतु भविष्य में प्रतिदिन अनंत काल में क्या होगा? दाऊद और हम मरने के बाद अनंत जीवन की क्या आशा रखें? मित्रों, पौलुस नामक एक संत ने रोम के मसीह जनों को एक पत्र लिखा था जो लगभग 60 AD में लिखा गया था। उसने लिखा कि प्रभु यीशु के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ शांति और आशा प्राप्त है। उसने लिखा रोमियो 5:1-8 में, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुँच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। मित्रों, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। कैसा अद्भुत पाठ! इन सब का अर्थ क्या है? मित्रों, सबसे पहले तो परमेश्वर के साथ हमारी शांति है जिसे प्रभु यीशु ने स्थापित किया है। यह शांति प्रभु यीशु में और हमारे लिए किए गए उसके काम में विश्वास एवं भरोसा रखने से प्राप्त होती है। परमेश्वर के साथ शांति ना तो कोई सरकार ला सकती है और ना ही पैसा, कर्म भी नहीं ला सकता है या अन्य कोई कार्य ला सकता है। मित्रों, धीरज से खराई और खराई के साथ आशा उत्पन्न होती है। अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए मरने भेजा। यद्यपि हम तो कुकर्मी थे अर्थात पापी थे, परमेश्वर के मन में हमारे लिए कैसा महान प्रेम है! कैसा महान प्रेम मित्रों, एवं आशा अब और अनंत काल तक। इससे पूर्व कि हम ध्यान दें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, हम निमोनिया के विषय कुछ और अधिक चर्चा करते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को निमोनिया होता है और कुछ को नहीं होता है? इसका उत्तर देना संभव नहीं है। तब भी हम यह जानते हैं कि कुछ लोग अन्य लोगों की तुलना में निमोनिया ग्रस्त हो जाते हैं। ये लोग कौन हैं? इनके अनेक वर्ग हैं। 5 वर्ष की आयु से छोटे बच्चे, असाध्य रोग से ग्रसित किसी भी आयु के मनुष्य या और वृद्ध जन। आइए हम इन तीनों वर्गों को ध्यान से देखें। 5 वर्ष की आयु से छोटे बच्चे, मित्रों उनके शरीर अधिक प्रबल रोगों के लिए अभी बहुत छोटा और असुरक्षित है। वे गंभीर रोगों से लड़ नहीं सकते। 5 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए निमोनिया वर्षों से मृत्यु के प्रमुख 1 से 2 कारणों में से एक है। मित्रों ये बात जो कही गई है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कही गई है। दूसरा वर्ग है असाध्य रोगों से ग्रसित मनुष्य, जैसे मधुमेह, गुर्दे का रोग, गठिया, फेफड़ों के विकार, कैंसर तथा हृदय रोग और धूम्रपान इत्यादि। मित्रों इन रोगों के कारण शरीर निमोनिया के कीटाणुओं से लड़ने में सक्षम नहीं होता है। इनमें प्रमुख है मधुमेह और धूम्रपान से प्रभावित फेफड़े। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। करोड़ों मनुष्य धूम्रपान करते हैं और इस कारण उन्हें निमोनिया होने की संभावना अधिक होती है। अंत में हम देखते हैं वृद्ध जन, ऐसा क्यों है कि वे अधिक निमोनिया से ग्रसित होते हैं? इसके कई कारण हैं। मित्रों असाध्य रोग एक कारण है। वे युवाओं की तुलना में असाध्य रोगों से अधिक पीड़ित होते हैं, तथापि वृद्ध होने की प्रक्रिया ही मनुष्य को संक्रामक रोग से ग्रसित बना देती है। मित्रों ऐसा क्यों है? जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमारा शरीर युवावस्था की तुलना में रोगों से लड़ने में उतना शक्तिशाली नहीं रहता है। यह प्रक्रिया हमारी 40 वर्ष की आयु में आरंभ हो जाती है और धीरे धीरे अधोगति को प्राप्त करते हुए 60 से 70 और अधिक आयु में निमोनिया रोग होना ही नहीं, निमोनिया से मरने की संभावना भी बढ़ती जाती है। मित्रों हम जानते हैं कि 20 वर्ष की आयु के मनुष्यों को वही निमोनिया होता है, परंतु मरते बहुत कम हैं। परंतु वृद्ध जनों को निमोनिया होता है तो अनेक जन मर जाते हैं। यही कारण है कि वृद्ध जनों में निमोनिया का टीकाकरण अत्यधिक जरूरी होता है। वृद्धावस्था में हम अनेक बातों में दूसरे पर निर्भर करते हैं क्योंकि हमारा शरीर अधिक दुर्बल हो जाता है। तथापि हमने देखा है कि परमेश्वर के समक्ष हमारा आत्मिक जीवन भी बहुत दुर्बल है। मित्रों बाइबल में लिखा है, मेरी माता ने मुझे पाप में गर्भ धारण किया। हम सदा ही असाध्य हैं। हम पाप से अपने आप को बचा नहीं सकते। रोमियों उसके 5:8 में लिखा है, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मर गया। हम कुकर्मी थे तो अभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि हमारे लिए अपनी जान दे दे। यह एक अद्भुत बात है। परंतु मसीह यीशु हमारे लिए क्यों मरा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो उसके 10:9-10 में बाइबल कहती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपको बस यही करना है कि जो कहा गया है उस पर विश्वास करें। आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु मैं जानता हूँ कि आप मुझे पापों से बचाने के लिए क्रूस पर मरे। मुझे मेरे पापों से बचाने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।
प्रिय श्रोता आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, कार्यक्रम डॉक्टर लूका TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। आप हमसे फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09-588-20414। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।